ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ
S&S Lawyers ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S Lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000 अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो नो अपॉइंटमेंट नीडेड ड्राइव थ्रू फैसिलिटी वन स्टॉप शॉप अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktrucklube.com
CIBC Global Money Transfer के साथ अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दें CIBC Global Money Transfer की $0 ट्रांसफर फीस का फायदा उठाएं और अपने परिवार तक पहुंचाएं और भी ज्यादा पैसे आज ही CIBC.com/GMT इवेंट पर जाएं और प्रोमो कोड GMT इवेंट के साथ अपने पहले ट्रांसफर पर $300 तक वापस पाएं शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू
नान एंड कबाब GTA में 6 लोकेशंस और अब मिसिसागा में भी नान एंड कबाब ऑथेंटिक अगवान कुजीन फ्रेश एंड डिलीशियस ग्रिल आइटम्स एंड डिनर प्लेटर फॉर पिकअप एंड डिलीवरी ऑर्डर थ्रू nandk.ca 90 एनिगम बुलेवार्ड मिसिसागा और ओंटारियो N401-905-501-9889 नान एंड कबाब
पाकिस्तान और इंडिया के सस्ते टिकट्स के लिए एक ही नाम आज ही कॉल करें 905-461-0959 हज या उम्रे की सआदत हो या कोई भी मौका टूर्स फेयर विद बेस्ट सर्विस कोई भी एयरलाइन हो कोई भी शहर हो कहीं भी और कभी भी कॉल FJ 905-461-0959
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
Ayayo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden, ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see, must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157 जी हां 416-570-0157
अगर आपको रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, फैमिली मैटर्स, वेल्थ एंड एस्टेट मैटर्स या सिविल लिटिगेशन में कोई भी दुश्वारी हो या आपको फौरी मदद चाहिए, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मलिक लॉ ऑफिस के मोहम्मद अतीक मलिक, बैरिस्टर एंड सोलिसिटर। सर्व करते हैं GTA में दो लोकेशन से, 7045 Edwards Boulevard Suite 203 Mississauga, 1825 Markham Road Suite 205 Toronto. Malik Law Office. Call today 647-726-1949, 647-726-1949. Village Tales अब स्पेशल टेकआउट मेन्यू के साथ ब्रेकफास्ट, कढ़ाई, करी, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लानर, रोल्स और बहुत कुछ। ऑर्डर फ्रॉम स्किप द डिशेस एंड उबर ईट्स फॉर टेकआउट, कैटरिंग, वीकली एंड मंथली फूड पैकेजेस के लिए कॉल करें 647-774-4888, 647-774-4888. Village Taste.
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेब्ट कंसोलिडेशन, असेस इन रियल एस्टेट। He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, Mortgage Agent, 416-454-6065.
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया, सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट, हैमिल्टन में, 905-521-0540.
एशियन फूड सेंटर, 905-793-1338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टिफल्स, ब्रेड, डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। Order now for in-store free pickup, 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center, 905-793-1338. Asian Food Center.
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स। मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान, साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर, न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक, ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577।
चार सौ 416-502 8000। स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्ट डील्स, सभी के लिए शिराज शफीक, 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अजीत, सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज, 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off, 416-792-8792.
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792।
जी सामने नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुशकर सेहतमंद होंगे। भाई हमारा और आपका साथ रहेगा आज एज यूजुअल 5:45 तक। जी हाँ, 5:45 तक आपने और हमने साथ साथ रहना है। आज भी हम स्पेशल प्रोग्राम करेंगे लता मंगेशकर जी के ऑनर में, एंड हमारे साथ स्पेशल गेस्ट होंगे। फिलहाल मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब आपकी जानी पहचानी शख्सियत लियाकत मलिक साहब, एंड फिर इंडिया से कुछ लोग हमारे साथ शामिल होंगे। तो इसी तरह हम 5:30-6:30 तक इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम शामिल होंगे यहां पर। सब आज ट्यूसडे का दिन है, फरवरी की 8 तारीख, और -1 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त हमारे मोहल्ले में हो रहा है। और आज शाम का टेम्परेचर देखें तो शाम को टेम्परेचर सब -8 डिग्रीज तक जाएगा, और आज रात को -9 डिग्रीज है। और कल सुबह इंशाल्लाह ताला हमारी और आपकी आंख खुलेगी तो कुछ वेट स्नो एंड कुछ फ्लरीज वगैरह, -3 डिग्रीज टेम्परेचर होगा। और उसके साथ साथ वेंसडे को भी देख लें तो वेंसडे को +2 दोपहर को, एंड कल +2 होगा। थर्सडे फ्राइडे 0 डिग्रीज टेम्परेचर है, और सैटरडे को -3 डिग्रीज टेम्परेचर। ये तो बातचीत होगी टेम्परेचर की अब से लेकर अगले 5 दिनों तक की। साहब अगर आपने पाकिस्तान पैसे भिजवाने हो तो साहब मेगा मनी एक्सचेंज का हम आपको नाम देते हैं, मेगा मनी एक्सचेंज। मिस्टर और मिसेज शबाहत यहां पर होते हैं। 9052794754 इनका फोन नंबर है, 9052794754। और इसके साथ साथ ये बताना चलूं आपको कि आज अगर आपने पाकिस्तान पैसे भिजवाने हैं तो 139.50 आपको पाकिस्तान में एक कैनेडियन डॉलर के मिलेंगे। तो ये तो हो गया मेगा मनी एक्सचेंज का आपके सामने। और साहब पिज्जा खाना हो आपने तो जबरदस्त किस्म का पिज्जा आपने खाना हो, अ यूनिक टाइप ऑफ पिज्जा मेड बाय इटालियन एंड इटालियन पिज्जा, वुड फायर्ड प्लाजा पिज्जा है ये, एंड स्पेशलिटी पिज्जा, पास्ता, सैलेड बोल, डिजर्ट एंड किड्स मेन्यू यहां पर होते हैं। डो बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, डो बॉक्स जो है ये आपको मिसागा में मिलेगा, हैमिल्टन मिसागा, ओकविल, टोरंटो डाउनटाउन। कहते हैं गेट 10% ऑफ ऑफ योर नेक्स्ट ऑर्डर। आप फोन कर लें, यहां पर मेरे पास इसका फोन नंबर है 9057900734। डो बॉक्स DOUGH डो बॉक्स का अपने सामने पिज्जा बनते हुए देखिए। 5955 लैटिमर ड्राइव इन मिसिसागा, 9057900734। एक दफा ट्राई करना मस्ट है साहब। अगर आपने उमरा के लिए जाना है तो उमरा का पैकेज आपके लिए जनाब FJ ट्रेवल वालों ने एक बड़ा अच्छा पैकेज दिया है, और दिस इज बिटवीन फरवरी 9 टू मार्च 9 तक के बीच में आप जब भी जाना हो आपने। और ये 4 नाइट्स मक्का, 3 नाइट्स मदीना, वॉक इन डिस्टेंस होटल्स, सऊदी विजिट वीजा ओनली, और सारी की सारी जितनी भी कार्रवाइयां होती है वो सब ये पूरी करेंगे आपके लिए FJ ट्रेवल। FJ ट्रेवल को आप कॉल कर लें एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 9054610959 इनका फोन नंबर है। और इसके साथ साथ सब बजमैक्स BUZZMAX buzzmax.ca पे जाके आप बजमैक्स की भी नई नई जितनी भी इनके स्पेशल्स हैं आप देख सकते हैं। ये कहते हैं आर यू लुकिंग फॉर इंटरनेट फॉर योर होम और बिजनेस, buzzmax.ca ऑफर्स अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान्स एंड ये गारंटी करते हैं लोएस्ट प्लान इन द मार्केट, no contract, no pricing gimmicks, all unlimited usage, no need to purchase a modem, you can rent a modem for as low as $5 to $10 a month, quick switch from any service provider, 100% money back guarantee, aur aap unko call kar le बज मैक्स को 416-800-0900 इनका फोन नंबर है। विलेज टेस्ट की बात कर चलूं, विलेज टेस्ट आपको ट्यूसडे टू थर्सडे 2 बजे से लेकर 10 बजे तक खुला होता है। फ्राइडे को 5:30 to 10:30, ये सैटरडे एंड संडे को ब्रेकफास्ट बफे 10 AM to 2:30 PM। तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, अब तो 50% की अलाव है ना, तो आप जाके अंदर खा भी सकते हैं, बैठ के आराम से खाइए। विलेज टेस्ट CA पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। मिस सागा में साहब ये बनम थॉप एंड डिक्सी के कॉर्नर पर जो प्लाजा है, उस प्लाजा में आपको मिलेगा ये। फॉर पार्टीज इंक्वायरीज 6477744888 इनका फोन नंबर है। और साहब किसकी बात करूं आपको मैं, बातचीत चलती रहेगी साहब, ये बातचीत चलती रहेगी इसी तरह। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जनाब, हमारी मोहतरमा लता मंगेशकर जी के ऊपर, एंड लियाकत मलिक साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनके 2 गेस्ट भी हमारे साथ होंगे वेरी सून। लियाकत भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं?
वालेकुम सलाम माजिद भाई, बहुत अरसे के बाद रेडियो पे बैठना नसीब हुआ।
और ये भी कि भाई आप आए हो, बाहर आई।
जी जी, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लता जी इस दुनिया में नहीं रहीं और उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और हमारे साथ होंगे सुनील गौर और राजेश गौर। सुनील गौर और राजेश गौर हमारे साथ बॉलीवुड की दुनिया प्रोग्राम भी करते हैं। इनके फादर वरजिंदर गौर, जिन्होंने 35 साल तक बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, स्क्रीन प्ले भी लिखे, कहानियां भी लिखी, सुनील गौर और राजेश गौर उनके बेटे हैं और ये फिल्म जर्नलिस्ट हैं। तो ये भी लता जी के मुतालिक बात करेंगे, लता जी के साथ इनकी मुलाकातें रहीं। माजिद भाई, लता जी जो थी, इनके वालिद का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर जो थे, ये क्लासिकल सिंगर भी थे और स्टेज आर्टिस्ट भी थे। और जब लता जी और उनकी बहनें भी थीं और उनका भाई, ये जब लता जी 13 साल की हुई तो दीनानाथ मंगेशकर साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया। तो एक विनायक साहब थे, उन्होंने इस पूरी फैमिली की जो है निगहदाश्त शुरू कर दी। तो वो उनको बॉम्बे में भी ले आए, जो अब मुंबई कहा जाता है जिसको, तो वो ले आए उनको। और उनको गाने जो है, और एक फिल्म थी बड़ी माँ, बड़ी माँ में लता मंगेशकर और आशा भोसले ने एक कैमियो रोल भी किया था, छोटे छोटे फिल्मी रोल भी किए थे।
अच्छा, ये नहीं मालूम था।
जी, उन्होंने रोल भी किए थे 1948 में। माजिद भाई, 1948 में एक फिल्म बन रही थी शहीद, तो मास्टर गुलाम हैदर साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो उनको शाधर मुखर्जी समथिंग उनका इस तरह नाम था, वो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके पास लेके गए लता जी को कि ये आपकी फिल्म में गाना गाएगी। तो जब उन्होंने मुखर्जी ने गाना सुना तो उन्होंने लता मंगेशकर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसकी आवाज़ बहुत पतली है, तो मैं इनको गाना नहीं दे सकता। तो बड़ा अल्फाज है माजिद भाई कि मास्टर गुलाम हैदर ने कहा कि आज मुखर्जी आप इस लड़की को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मैं नहीं हूँ इस दुनिया में, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग फिल्मसाज हदायतकार इसके कदमों में बैठे होंगे।
वाह।
और हर मौसीकार ये चाहेगा कि ये लड़की उनकी फिल्म के लिए गाए।
क्या बात है जी,
2013
सच निकला
जी। और 2013 में लता जी, देखिए वो भूली नहीं इस बात को, लता जी ने कहा कि मेरा جو مینٹر گرو تھا جس نے مجھ پر اعتماد کیا وہ تھا ماسٹر غلام حیدر.
کیا بات, کیا بات.
تو ابھی ہمارے ساتھ راجیش گور صاحب آ گئے ہیں.
جی راجیش گور صاحب.
راجیش, سنیل نمستے.
جی نمستے, السلام علیکم.
آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ.
ہاں جی, ارے آپ کی محبت ہے سر, آپ کے لیے کبھی بھی, اینی ٹائم فار یو.
اور ہمارے ساتھ عارفہ جی بھی جڑ گئی ہیں, یہ بھی آ گئی ہیں, اور ہمارے ساتھ ماجد بھائی بھی ہیں.
واہ واہ واہ.
اور میں نے یہ بتایا کہ آپ کے جو فادر تھے وجندر گور, انہوں نے لتا جی کے لیے, لتا جی کی فلموں کے لیے یا ان کے لیے گانے لکھے, اور وہ گانے آج ہم اپنے ناظرین کو, اپنے سامعین کو سنائیں گے بھی.
جی, فادر نے ان کی فلموں میں ڈائلاگ بھی لکھے. ہاں جی
میں آپ تمام, اپنے تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. سو سوری تھوڑا سا لیٹ ہونے کے لیے معذرت کی خواستگار ہوں. آج کا پروگرام بھی جیسا ہم نے کل کا پروگرام پیش کیا تھا, لتا جی کی طرح کیا تھا. بڑے لوگ جو ہیں دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں, لتا جی کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید, اور آج کا پروگرام بھی ایک شردھانجلی ہوگی, یعنی ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے. میرے ساتھ آج ٹو ہیو بالی ووڈ کے دو جرنلسٹ میرے ساتھ ہیں, اور یہ ہیں سنیل گورو
گور,
سنیل گور.
یہ اپنا راجیش گور اور سنیل گور, یہ جو ہے نا عارفہ جی, یہ نام بدلنے میں بڑی ماہر ہیں, ان کو مہارت حاصل ہے. اور اگر آپ کا نام جو ہے, لیکن یہ ایک جو ہے نا سنیل, ان کو راجا کہا جاتا ہے, اور وہ جو راجیش ہیں ان کا نام منا ہے.
حالانکہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا, راجیش کو راجا کہنا چاہیے تھا.
یہ صحیح بات ہے.
بہت شکریہ آپ کا راجیش جی اور سنیل جی. آج کا پروگرام, جیسے آپ جیسے بڑے لوگ جن کو لتا جی کے ساتھ ملنے کا, کام کرنے کا موقع ملا, ہم اسی حوالے سے آپ کی یادداشتیں لیں گے. اور بہت شکریہ ہمارے ساتھ. میں لیاقت بھائی کی بہت شکر گزار ہوں. لیاقت بھائی کا پروگرام بھولی بھی یادیں اچھے ہونے کے باعث یہ دو بہت اچھے جرنلسٹ ہمارے ساتھ شامل ہوئے انڈیا سے. لیاقت بھائی بھی آج میرے ساتھ شامل رہیں گے. صاحب لتا منگیشکر صاحبہ, اور ایک بڑے خاندان سے, بڑے گھر سے ان کا تعلق تھا لتا جی کا. اور کہتے ہیں کہ 1963 انہوں نے ایک دفعہ, لتا جی نے ایک گیت گایا تھا جو کہ ہندوستان کی محبت کا گیت تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی کھلے عام روئے نہیں تھے, مگر لتا جی نے فرسٹ ٹائم جب اس گیت کو گایا تھا تو جواہر لال نہرو جو تھے ان کی آنکھوں سے آنسو رو پڑے تھے. میں یہ چھوٹی چھوٹی یادداشتیں لوں گی, مگر ہم چھوٹی چھوٹی بات لتا جی کی بھی کر جائیں گے, مگر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنگیت آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. بہت شکریہ ہمارے ان تمام اسپانسرز کا جن کے توسط سے ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. اور آپ کا لتا جی سے رابطہ آخری بار کب ہوا تھا؟
رابطہ ہمارا ہوا تھا, ہم ان سے, وہ ایک دم ہیلدی تھی, بہت بڑھیا تھی, اور ہم کو تاج ہوٹل جو یہاں پہ بامبے میں ہے,
جی جی,
وہاں ملی تھی, اور ان سے بہت اچھی باتیں ہوئیں, اور فادر کی باتیں ہوتی تھی اکثر, اور انہوں نے بولا اور چائے پیتے ہیں. وہ تھی راج سنگھ کے ساتھ, مسٹر راج سنگھ ڈنگر پور ان کے ساتھ تھی. تو ہم ان کے ساتھ, ہم کو موقع ملا کہ اتنی مہان ہستی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چائے پی, تو وہ تو یادگار لمحہ ہے ہماری زندگی کا.
انہوں نے یہ کہا کہ میں نے گور صاحب, برجندر گور جی کے گانے گائے ہیں, تو انہوں نے چار چھ لائنیں گا کے بتائی بھی ان کو, سب یادداشت ان کی اتنی اچھی تھی,
یادداشت بہت بہت زبردست یادداشت تھی. فادر کا انہوں نے ذکر,
जी
आप पवल के जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर हमारे राजेश जी को भी देख रहे हैं, राजा जी को भी देख रहे हैं जो हमारे साथ शामिल हैं, लता जी के साथ इन्होंने जो इनकी मुलाकातें रही। मैं जो आपके साथ एक वाक्य शेयर करी थी कि 1963 में लता जी ने प्रदीप का लिखा नगमा ए मेरे वतन लोगों को गाया तो नेहरू जी अपने आंसू नहीं रोक पाए। और आगे देखिएगा, कहते हैं कि जो हिदायतकार महबूब खान थे वो लता जी के पास गए और उनसे कहा पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू साहब के पास ले जाकर कहा ये रही हमारी लता, आपको इनका गाना कैसा लगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखें नम कर दी। और ये कहकर उन्होंने लता जी को अपने गले लगा लिया। बेइंतहा गीत लता जी ने गाए। मुझे ये बताइएगा कि कोई एक गीत जो आप इस वक्त हम इब्तिदा गीत से ही करना चाहते हैं।
इनके बरजिंदर गौर साहब ने जो गीत लिखा था लता जी के लिए वो हम पेश कर देते हैं।
आंसू जी, आंसू अब तू ना बहाना अपना गम किसी को ना बताना, तू ना बहना अपना गम किसी को ना कहना, ये लता जी का वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग है।
बहुत शुक्रिया,
बड़ा मीनिंगफुल गाना है। और ये हमारे वालिद ने लिखा था ब्रजेंद्र गौड़ ने, और 1952 में फिल्म आई थी काफिला,
काफिला में थी।
तो ये उसमें लिखा था, ये लता जी को बहुत पसंद था ये गाना, उनके दिल के करीब था। ये गाना अगर आप बजा दें
बिल्कुल,
तो
ये गाना एयर पे जाता है। उसमें गॉड ब्रदर्स कोशिश यही होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा गीत शेयर कर सकें उन यादों को आपके जरिए, क्योंकि आप उनके करीब थे, आपके जरिए हम याददाश्तों को ताजा करेंगे और हम उनके गीतों से आज के प्रोग्राम को सजाएंगे। लीजिए साहब इस खूबसूरत गीत को समाप्त फरमाइए।
लहरों से पूछ लो, लहरों से पूछ लो, या किनारों से पूछ लो, या किनारों से पूछ लो, फिर भी यकीन हो तो, फिर भी यकीन हो तो सितारों से पूछ लो, लहरों से पूछ लो, लहरों से पूछ लो।
उल्फत की उमंगों का छोटा सा काफिला, छोटा सा काफिला, धड़कन की राह चल के इस दिल से जा मिला, उस दिल से जा मिला। अरमान एक है यदि अरमान एक है,
यूं हम जुदा जुदा है मगर जान एक है, मगर जान एक है।
गुलशन की बहारों से नजारों से पूछ लो, गुलशन की बहारों से नजारों से पूछ लो,
किनारों से पूछ लो, या किनारों से पूछ लो, फिर भी यकीन हो तो, फिर भी यकीन हो तो सितारों से पूछ लो, लहरों से पूछ लो, लहरों से पूछ लो।
پروگرام ساز آواز میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر اور میرے ساتھ لیاقت بھائی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان کے دو جرنلسٹ ہمارے ساتھ شامل ہیں. راجیش اب دیکھیے مجھے آخری نام
گوڑ. اچھا
راجیش گوڑ اور سنیل گوڑ.
عارفہ جی میں ابھی میں ذکر کر رہا تھا, ماجد بھائی تھے تو ذکر کر رہا تھا کہ 1948 میں ایک فلم بن رہی تھی شہید, اور اس میں ماسٹر غلام حیدر صاحب جو ہیں یہ لے کے گئے لتا جی کو وہاں پہ, جو پروڈیوسر تھے مکر جی. تو مکرجی نے ہاں جی انہوں نے کہا کہ جناب ان کی آواز بہت پتلی ہے, یہ ریجیکٹ یہ میں ان سے نہیں گوا سکتا. تو وہاں پہ بڑے تاریخی فکرے انہوں نے کہے تھے ماسٹر غلام حیدر نے کہے کہ آپ کی سننے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا, میری بات نوٹ کر لو, ایک دن آئے گا کہ آپ سب پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اس کے قدموں میں بیٹھے ہوگے. اور ہر موسیقار کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو فلموں میں گوائے.
بالکل صحیح, وہی ہوا. بالکل صحیح. لیاقت بھائی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم جناب سنیل گوڑ اور راجیش گوڑ سے بھی ضرور ان کی کوئی یادداشت لیں گے, مگر کہتے ہیں 1948 میں فلم جب مہر ریلیز ہوئی نا تو گیتا رائے کو چھوڑ کر لتا منگیشکر کے مقابلے کی تمام گلوکار ہیں جس میں شمشاد بیگم تھی, زہرا بائی تھی, پال گھوش, امیر بائی, ایک ایک کر کے لتا جی کے راستے سے ہٹتی چلی گئی. 1950 میں انہوں نے ایک گیت گایا تھا, آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا آنے والا, اور کہتے ہیں اس وقت تک نا آل انڈیا ریڈیو پہ فلمی گیت بجانے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک, اور انڈیا کے لوگوں نے پہلی بار لتا جی کی آواز میں آئے گا آئے گا آل انڈیا ریڈیو پہ یہ گیت سنا تھا, فلمی گیت. کہتے ہیں کہ جیسے بھی ذکر کر رہے ہیں بڑے غلام علی صاحب کا, ایک بڑے اس وقت کے فیمس کلاسیکل گلوکار پنڈت جسراج واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بار بڑے غلام علی خان صاحب سے میں ملنے امرتسر گیا اور ٹرانسسٹر پر لتا جی کا گیت لگا ہوا تھا, اور گیت تھا کہ یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا. ہم بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ گیت لگا بھی دیں آپ کے لیے, اور یہ گیت ٹرانسسٹر پر لگا ہوا تھا اور کلاسیکل گلوکار پنڈت جسراج وہاں موجود تھے اور بڑے غلام علی خان صاحب موجود تھے. کہتے ہیں کہ بڑے غلام علی خان صاحب بات کرتے کرتے ایک دم سے خاموش ہو گئے اور گانا ختم, انہوں نے گانا تسلی کے ساتھ سنا, اور جب گانا ختم ہوا تو بولے کمبخت کبھی بے سری ہوتی ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو ادائیگی تھی یہ بالکل ایسے جیسے کوئی اپنے بچے کے لیے نہیں کرتا کہ اس کو انکریج کرنا کہ مطلب یہ غلطی کبھی کر سکتا ہی نہیں ہے. آئیے صاحب اس گیت کو سنتے ہیں.
بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا,
کمپلیمنٹ تھا, بہت
شکریہ.
گیت کو سنتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
ہو گیا پیار ہی میں کھو گیا, یہ زندگی
फरमाया जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। मैं इसका एक बंद सुन रही थी कि सुनाएगी ये दास्तां शमा मेरे मज़ार की, खजां में भी खिली रही ये कली अनार की। लियाकत भाई, आप भी और सुनील से और राजेश से मैं यही बात करना चाहती हूँ। मुझे आज ही पता चला कि लता जी से आखिर में किसी ने पूछा कि जब आपका अगला जन्म होगा तो क्या आप लता मंगेशकर ही बनना पसंद करेंगी, तो उन्होंने कहा है ये बहुत दुख भरी जिंदगी थी, अगर मेरे अपने अख्तियार में हुआ तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना पड़ूंगी। यकीनन 13 साल की उम्र से उन्होंने अपने घर के जिम्मेदारियों और बोझ उठाए, और मैं बल्कि कल के प्रोग्राम में शेयर कर रही थी कि उनको जिंदगी की एक उनकी मोहब्बत थी भी राजा साहब से, मगर ना उन्होंने शादी की ना लता जी ने शादी की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया।
बिल्कुल,
ये तो किताबों में भी आ गया। तो उन्होंने ये लफ्ज कहा, यानी देखने में चीजें कुछ और नजर आती हैं मगर इंसान के पीछे के दुख कोई भी नहीं देख सकता।
जी बिल्कुल।
देखिए ये दो फन जो ये नूरजहां, मैडम नूरजहां, उन्होंने भी बचपन से 3-4 साल की उम्र से गाना शुरू किया, और लता जी ने भी 13 साल की उम्र से शुरू किया।
5 साल की उम्र
में
लता जी ने 5 साल जब वो 5 साल की थी लता जी तब उन्होंने गाना
स्टार्ट। जी जी जी।
5। मगर मैं सर उनके बारे में एक पढ़ रही थी कि उनके वालिद साहब भी गीत गाते थे, और वो अपने एक दफा वालिद को नहीं पता था कि लता जी इतना खूबसूरत गाती हैं।
हालांकि मैंने दीनानाथ मंगेशकर
मुत्तफरिक रिपोर्ट्स हैं, मैंने एक ये भी रिपोर्ट सुनी कि उनका एक गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, क्योंकि वो बड़े घर से ताल्लुक रखते थे तो वो गाना फिर फिल्म में नहीं जा पाया था। मगर एक और वाकया जो हम बार बार सुनते हैं वो ये है कि लता जी के वालिद साहब अपने एक शागिर्द को जिसको सिखा रहे थे और कहने लगे कि तुम अपना रियाज जारी रखो, मैं वापस आता हूं, तो उसने कोई सुर में उतार चढ़ाव किया तो लता जी ने उसको करेक्ट किया, और बाद में उनके वालिद साहब उनकी बेगम से अपनी बेगम से कहने लगे कि हम ऐसे ही बाहरों को सिखाते रहे तो हमारे तो अपने घर में इतना अच्छा गाने वाला मौजूद है। कुछ फरमाएंगे
ये कहानी? इंसिडेंट बड़ा पॉपुलर हुआ यहाँ पे, तो जिनको सिखा रहे थे उनमें गलतियां इन्होंने निकाली लता जी ने।
जी जी जी। अच्छा, लता जी ने अपनी जिंदगी में उर्दू को बहुत दिया, हालांकि हिंदी में संस्कृत के लफ्ज भी होते हैं मगर उर्दू जबान की तरवीज में जिसने नहीं भी गाना सुना होगा तो गाड़ी चलाते हुए राह चलते हुए कहीं ना कहीं उसके कान में लता जी की आवाज जरूर पड़ी होगी। तो लता जी ने उर्दू को बहुत दिया। मैं बल्कि अक्सर ट्रिनिडाड के लोगों को देखती हूँ जिनको उर्दू का एक लफ्ज समझ नहीं आता मगर वो गीत बहुत खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। लता जी ने उर्दू का लहजा कैसे लिया, मतलब उसमें किन किन लोग, मैं भी शेयर करती हूँ आप भी बताइए क्या रोल था और किसका रोल था।
लता जी के देखिए जो पहले गुरु थे वो अमानत अली खान थे।
अच्छा,
तो उनसे उन्होंने क्लासिकल की,
सलामत अली खान,
अमानत अली खान। अच्छा। तो उनसे उन्होंने क्लासिकल की तालीम हासिल की, तो उन्होंने उनको सब डिक्शन और ये सब जो चीजें थी तो वो सब उन्होंने सिखाया। उर्दू की नॉलेज तो उन्होंने खैर जिंदगी भर उनके गुरु कोई ना कोई रहे तो सीखते रहे। वो गुलाम हैदर का उनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था जो म्यूजिक डायरेक्टर थे।
और
गुलाम हैदर साहब ने जब उनकी पहली फिल्म रिजेक्ट की तो ये बहुत डिजेक्टेड हो गई। इन्होंने बोला कि मेरा काम, बोला काम तो तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारा वक्त आएगा, ये लोग बेचारे समझ नहीं पा रहे तुम्हारी वो काबिलियत। तो बाद में फिर मजबूर एक फिल्म आई थी उनकी ये गुलाम हैदर साहब की, उसमें इनका गाना बहुत सुपर हिट हुआ था लता जी का। और लता जी बहुत बड़ी सिंगर बनते गए और गुलाम हैदर को उन्होंने हमेशा उनकी शुक्रगुजार रही और उनके फेवरेट रहे, और मदन मोहन उनके फेवरेट थे बहुत।
बहुत शुक्रिया।
मदन जी, मदन मोहन को वो अपना भाई समझते थे। अच्छा। भाई मानते थे उनको, फिर बाद में रक्षाबंधन भी बांधते थे।
मदन मोहन से बहुत मुतासिर थी और गुलाम हैदर साहब से।
बहुत शुक्रिया राजेश गौर और सुनील गौर हमारे साथ हिंदुस्तान से शामिल हैं। कहते हैं कि उनका जो उर्दू का तलफ्फुज था बहुत खूबसूरत था, इसमें उस्तादों का बड़ा रोल था। हरीश भेमानी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन अनिल बसवास और लता जी लोकल ट्रेन से गुड़गांव जा रहे थे। इत्तफाक से उसी ट्रेन में बांद्रा स्टेशन से दिलीप कुमार भी सवार हो गए। अब अनिल बसवास ने इस नई गुलूकारा का तारुफ दिलीप साहब से करवाया तो वो बोले कि मराठी लोगों के मुंह से दाल भात की महक आती है तो उर्दू का बघार क्या जाने। इस बात को लता जी ने एक चैलेंज अपनी जिंदगी में बना लिया और उन्होंने फिर बाकायदा उर्दू का उतार चढ़ाव सीखा। इसके बाद शफी साहब ने उनके लिए एक मौलवी उस्ताद का बंदोबस्त किया जिसका नाम महबूब था और फिर लता जी ने बाकायदा, हालांकि वो स्कूल भी नहीं गई थी अपनी जिंदगी में, मगर उन्होंने उर्दू की बाकायदा तालीम हासिल की। और मेरा ख्याल है कि आज हम भी जब उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू को एक बहुत बड़ी देन लता जी की जानिब से है।
उस दौर में अपना लता जी अपना आरफा जी उर्दू पढ़ाई जाती थी हिंदुस्तान में
जी।
उर्दू का ये सारे धर्मेंद्र वगैरह जो हैं, ये सारे जो एक्टर हैं, इन्होंने उर्दू सीखी थी। ये बाद में ये हिंदी जो है ये आ गई है लेकिन उर्दू शुरू से ही उर्दू है।
नहीं, हिंदी में लिया गया तो देखिए उनकी रिलीजियस किताब संस्कृत में है और
है।
किताब का तड़का तो हो, किताब के अल्फाज तो होते
तो हैं
तो उर्दू की एक अपनी पहचान थी, हिंदी के बीच में वो लफ्ज आते हैं। एनीवेज हम एक और गीत की जानिब भी आपको लेकर के चलते हैं, इस गीत को आप एंजॉय कीजिएगा। माजिद भाई हमें बताएंगे गीत अगला वाला हमारा कौन सा है।
मुगले आजम का जब प्यार किया।
मैंने लता जी से पूछा था
जी
कि आपको खाने में क्या पसंद है।
अच्छा,
तो वो लता जी ने मुझे कहा कि जो भी स्पाइसी खाना हो वो बहुत पसंद है, मतलब स्पाइसी चाहिए उनको खाना जो भी चाहिए वो और दही बहुत पसंद था उनको खाने का और अचार।
अच्छा अचार, और हालांकि जिन लोग गाने वाले लोग होते हैं वो खटाई के तो करीब नहीं जाते,
लोग परहेज करते हैं लेकिन वो बोलती थी ये खट्टा खाने से, अचार खाने से,
तीखा
खाने से गला सुरीला मिठास आ जाती है गले में। और फ्रूट्स खाती थी वो, नाशपाती उनका फेवरेट फ्रूट था।
अच्छा,
नाशपाती जो पेयर जो थे उनके फेवरेट थे वो।
अच्छा,
क्योंकि यहाँ पे भी हमारे घर के यहाँ से भी एक बार शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ पे भी मिली थी
जी।
तो वो नाशपाती का ड्राइवर उतर के खरीद रहा था
जी जी।
तो हम लोगों को बोली नाशपाती खाओ ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। हम लोगों को उनके रिकॉर्डिंग रूम उनका यहीं पर था
हमारे घर के बाजू,
तो ये यहाँ से लोखंड वाला अंधेरी के बाजू में ही था तो उन्होंने बोला कि आप ये खाइए ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए।
अच्छा, मैं
वो नाशपाती अब देखे कल जाहिर बात है कि नाशपाती के भाव बढ़ जाएंगे।
बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि भी आपने जब कहा कि लता जी आपके घर के करीब ही शॉपिंग कर, उनका ड्राइवर शॉपिंग कर रहा था, तो इतनी महान इतनी बड़ी हस्ती और वो जब निकलती थी सड़क पे कभी चलती होंगी तो किस हिसाब से उनको लोग रिसीव करते थे या उनको वेलकम करते थे?
फ्रेंड्स के साथ वो इतनी अच्छी थी और बहुत हम्बल बहुत काइंड थी और लाइन लग जाती थी, मतलब उनमें बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट था लेकिन उनमें ईगो नहीं था। ये लता जी की बड़ा एक
काइंडनेस
अजीब सा कॉम्बिनेशन था, ईगो नहीं था, सेल्फ रिस्पेक्ट था और बहुत काइंड थी। फ्रेंड्स के लिए तो हमेशा मतलब वो बोलती ये है तो मैं हूँ, बहुत मतलब बहुत प्यार करती थी सबको और बहुत सिंप्लिसिटी थी उनमें, सादगी, मतलब बोलना पड़ता था कि ये वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिंगर हैं लता मंगेशकर।
तो भी शर्मा भाई, सुनील भाई ये गाना सुन ले पहले।
सुनील भाई ये गीत फिल्म महल से,
सब की आवाज है
मैंने मेरी आवाज के
बाद एक गीत हम सुनते हैं फिल्म महल से, ये गीत है
और मधुबाला जी भी इस फिल्म से बन गई
जी जी।
उन्होंने यही कहा था कि इस फिल्म के बाद उनके बिल्कुल दिन घूम फिर गए थे, मगर जी लता जी के गले में वाकई ये जो वोकल कॉर्ड्स थे उनके अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल बनाए थे। हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। गीत सुनिएगा आएगा आएगा आने वाला।
बिल्कुल बगैर कहते परवान जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं।
फिल्म से महल से आपने ये गीत सुना और लता जी के लिहाज से यकीनन हम बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत आवाज भी। कहते हैं राजू बार्तन लता मंगेशकर की सवाने हयात में लिखते हैं कि लता ने उन्हें बंबई से फोन किया, बातचीत के दौरान महबूब साहब ने कहा आपका गाना सुनने को बहुत दिल करता है, बड़े अरसे से नहीं सुना, लेकिन इस मुल्क में मैं रिकॉर्ड कहां से लाऊं। तब लता जी ने उनसे पूछा कौन सा गीत सुनना चाहते हैं और महबूब साहब ने फरमाइश की तो लता जी ने उस पर गीत सुनाया रिस्क बलमा। हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे मगर क्योंकि मेरे साथ लियाकत भाई भी तशरीफ फरमाए यहाँ पे जिनको गीतों के बारे में ज़्यादा मुझसे मालूम है, और ये दो लोग सुनील गौर और राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। इनके वालिद साहब राजेंद्र गौर साहब ने
राजेंद्र गौर
अच्छा जी, मुझे ये बताइए आपके वालिद साहब के साथ बहुत से आर्टिस्ट का मुलाकात होती, तो आप बचपन से ही लता जी से मुलाकात की आपने, यानी जब शी वॉज वेरी यंग एंड शी वॉज वेरी प्रिटी?
यस, लता जी का क्या है कि जब तब तो हमने भी होश नहीं संभाला था, हमको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे वालिद का क्या मकाम है इंडस्ट्री में, हमें तो ये भी नहीं पता था कि लता जी यहाँ एक गाने वाली होंगी एक ये, लेकिन जैसे जैसे हमने मतलब हम बड़े हुए हमें होश आया कि ये चीजें क्या हैं, तब हमें मालूम पड़ा कि ये लता मंगेशकर हैं, मतलब इतनी ग्रेट सिंगर हैं ये, और ये तब वैसे जैसे उम्र के साथ पता चलने लगा
तब हम मिलते हैं,
और तब हमें इस बात का भी एहसास हुआ कि हमारे वालिद का मकाम राजेंद्र गौर का फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, तो इस तरह से हमको उम्र के हिसाब से नॉलेज मिलती है।
अच्छा राइटर, बहुत खूबसूरत, आपके वालिद साहब भी बहुत खूबसूरत है राइटर, राजेंद्र गौड़ ही वाज वेरी हैंडसम मैन, वेरी हैंडसम मैन,
कटी पतंग शर्मीली अनुराग
वगैरह, कटी पतंग अनुराग शर्मीली सरस्वती चंद्र अखियों के झरोखों से बहुत सारी फिल्में लिखी, तो लता दीदी ने ये पूछा था कि मतलब
अखियों के झरोखों से भी आपके वालिद ने लिखी थी?
जी, जी वो भी गीत गाता चल
अक्षयों
के जरूरत तुरंत वही जो पिया मन भाई और टीप देवियां और चाइना टाउन
लाल पत्थर
हावड़ा ब्रिज।
चलिए जी आज हम अक्षयों के झरोखों से में भी एक गीत है अक्षयों के झरोखों से,
नहीं वो और फिल्म और है।
अच्छा
ये अक्षयों के झरोखों से फिल्म है, इसमें वो गाना जो है वो डिफरेंट है।
चलिए ठीक है, आप अब अगला गीत कौन सा सुनना चाहेंगे? राजेंद्र
गौर का साहब
आपके वालिद साहब की कलेक्शन से,
आंसू तू कभी ना बहना अपना गम किसी से ना कहना,
आंसू तू कभी ना बहना
आपने जो
गाना,
बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया,
अपना गम किसी से ना कहना अगर दो लाइन,
तो ये इसके बोल आपके वालिद ने लिखे थे, आवाज लता जी की थी, फिल्म कौन
लता जी ने हमसे एक बार पूछा था जब हमको मिली थी चीज एक 5-10 मिनट की मीटिंग, आपके फादर ने लिखना बंद क्यों कर दिया, तो हमने उनसे यही कहा था कि वो ये कहते थे कि गाना तो मैं 4 पन्नों में 4 गाने लिख दूं, लेकिन ये होता है कि मेरा एसोसिएशन फिल्म के साथ खत्म हो जाएगा
डायलॉग से
मतलब, लेकिन अगर मेरा स्क्रीन प्ले और डायलॉग फिल्म में होता है तो शुरू से आखिर तक मैं फिल्म में इन्वॉल्व रहता हूँ।
सही, बहुत शुक्रिया। आइए साहब ये जो ये गीत है इसको बड़े बूढ़ों ने इसलिए इस तरह से भी कहा कि मुसीबत का एक एक से अहवाल कहना, मुसीबत से है ये मुसीबत से ज्यादा, तो मसाइल जो है ना उनको बड़ी हिम्मत के साथ,
ये काफला 1952 की फिल्म थी.
इंजॉय दिस सॉन्ग.
जी
शुक्रिया. वाक्य भी मेरी नजर से गुजरा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती चलूं, और मेरे साथ मेरे मौजज दो मेहमान भी मौजूद हैं और तीसरा मेरा बहुत प्यारा काबिल एहतराम भाई जनाब लियाकत मलिक साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं. तो मगर हम उनकी याददाश्तों को ताज़ा करने लगे हैं. साहब ब्लूपर्स कहा जाता है बाज़ औक़ात स्टेज के पीछे अगर कोई चीज़ होती है, या हम सब इंसान हैं, हम सब इंसानों से गलतियाँ भी होती हैं, हम सब इंसान कभी खुल के हंस भी पड़ते हैं, कभी हंसी पे कंट्रोल भी नहीं होता, कभी आंसुओं पे भी कंट्रोल नहीं होता. तो कहते हैं कि लता जी ने खुद ये एक किस्सा सुनाया था. एक बार वो कहती हैं कि मैं और रफी साहब स्टेज पर गा रहे थे, गाने की लाइन थी ऐसे हंस हंस के ना देखा करो तुम सब की तरफ, लोग ऐसी ही अदाओं पर फिदा होते हैं. तो लफ्ज क्या था, लोग ऐसी ही अदाओं पर फिदा होते हैं. तो रफी साहब जब इस गीत को गा रहे थे तो उन्होंने गलती से गलत अदा कर दिया, उन्होंने पढ़ा कि लोग ऐसे ही फिदाओं पर अदा होते हैं. अब ये गाना ये अदा करने के बाद रफ़ी मरहूम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी हंसी निकली तो लता जी कहती हैं मेरी भी खिलखिला के हंसी छूट पड़ी. अब हम गाना गा नहीं पा रहे थे, अल्टीमेटली उनको इट वॉज अ लाइव शो, लाइव परफॉर्मेंस, तो फिर जो प्रोड्यूसर्स थे या जो भी मुंतजमीन थे उनको स्टेज पे पर्दा गिराना पड़ा क्योंकि हम अपना लाफ्टर ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे. तो और क्या बताएंगे आप लता जी के बारे में, उनकी हम्बलनेस के बारे में, क्योंकि बाज़ औक़ात जब इंसान के पास इतना बेशुमार मोहब्बतें होती हैं तो उसकी गर्दन में सरी आ जाता है. मगर लता जी को कैसा आपने पाया, जब कभी आप गुजरते थे या उनके करीब आते थे तो मेल मुलाकात उनका कैसा था?
लता जी बहुत डाउन टू अर्थ थी और उनको एक बार हमने पूछा था राजेश ने कि लता जी उनको दीदी बोलते थे, बोला दीदी आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है अपना, तो ये बात हमने पढ़ी भी और जगहों पर भी आई. तो उन्होंने बोला मुझे अपने गाने नहीं, मुझे दूसरों के गाने बहुत पसंद आते हैं, मैं वही सुनती हूँ और मैं अपने गाने नहीं सुनती.
तो मैं अपने गाने इसलिए नहीं सुनती क्योंकि मैं अपने गानों में गलतियां निकालूंगी फिर।
अच्छा।
मैंने बोला पर आप तो गलतियां करती नहीं है बिल्कुल। बोला नहीं नहीं मैं करती होंगी गलतियां, अगर सुनूंगी तो पता चलेगा। तो इतनी हम्बल थी वो,
बहुत जबरदस्त। मगर एक चीज जो मैं खुद एक खातून होने के नाते एक बात करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने उनको बहुत मर्तबा भी दिया, बहुत इज्जत भी दी, मगर उन्होंने कभी अपने गीतों की सिलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, अल्फाज की या जो बोल थे उन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, कभी उन्होंने गैर सतही गीत नहीं गाए थे। लगभग मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ?
अपने काम से उन्होंने बेईमानी नहीं की कभी, अपने काम से। आपकी नॉलेज बहुत जबरदस्त है। अपने काम से।
हाँ, एक और चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि लता जी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथ वाले तमाम फनकारों के लिए मिल के काम किया, बहुत सी जगहों पे उन्होंने स्टैंड भी लिया इसके लिए।
मुझे एक बात, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको इससे जुड़ा हुआ। आपने बोला उन्होंने स्टैंड लिया, तो एक बार रॉयल्टी का इश्यू आ गया था बहुत सालों पहले, तो लता जी कह रही थी कि जो फनकार होता है जो गाना गाता है लिखता है तो उसको रॉयल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि आज उसका वक्त अच्छा चल रहा है, कल को खुदा ना खास्ता उसका वक्त खराब भी हो सकता है, तो उसको रॉयल्टी अगर गाने की मिलेगी तो उसकी दाल रोटी निकलती रहेगी।
बिल्कुल।
तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि रफी साहब ने बोला कि नहीं रॉयल्टी क्या, हमारा तो गाना गा दिया हमने तो हमारा तो गाने से खत्म हो गया वास्ता, हमने अपने पैसे ले लिए, हम चले गए घर। वो अपनी जगह भी सही थे, प्रोड्यूसरों के हक में सोच रहे थे। बोला नहीं, इन्होंने बोला कि नहीं जो मतलब फनकार है उसको पैसे मिलने चाहिए। तो नाराजगी इस लेवल तक दोनों की बढ़ गई कि गाना गाना ही छोड़ दिया।
तीन चार साल तक।
हाँ, तो गाना नहीं गाया दोनों ने साथ में। ये क्रिएटिव एक झगड़ा था और दोनों का फिर बाद में सॉल्व हो गया, सुलझ गया, लेकिन एक बार ऐसी मतलब एक मन मिटाव हो गया था।
सही। न सिर्फ